पृष्ठ संख्या 132, अध्याय 12। पहाड़ी की ढलान पर और नीचे क्यारियों के बीच स्कूल के बच्चे अपने रंग बिरंगे कपड़ों में फूलों की तरह छिटके थे। दूर स्कूल के पुराने गिरजे के शिखर पर का क्रॉस धूप में चमक रहा था। पहाड़ की ठंडी हवा सिर को जकड़ती सी लगती थी। बाईं ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ किन्हीं अतल गहराइयों में से निकलकर सीधे आकाश की ओर उठते हुए चले आए थे, और उनके पीछे इन्हीं अतल गहराइयों में से साए साए की रहस्यपूर्ण सी आवाज सारा वक्त आती रहती थी। ढलान के सिरे पर हाथी की पीठ की तरह बड़ी सी चट्टान खड़ी थी, और उसकी एक दरार में से हॉली हॉक के फूलों के तीन चार डंठल निकलकर हवा में दाएं बाएं झूम रहे थे, और उनमें से पराग और फूलों की पंखड़ियां झर झर कर चट्टान के एक हिस्से को ढके थीं। हवा के किसी किसी झोंके में जंगली गुलाब की हल्की सी महक तैरती सी आ जाती और मस्तिष्क में सोई स्मृतियों को जगाकर निकल जाती। दूर नीलिमा की चादर ओढ़े एक पर्वतमाला थी, जिसकी कुछ एक चोटियों पर बर्फ छितरी थी और नीचे घने वनखंडों में ढकी ढलाने थीं। हॉल कमरे के बरामदे में खड़े खड़े महेंद्र के अंदर फिर एक बार जैसे रोशनी सिखिल उठी। स्कूल के विशाल डाइनिंग रूम में से निकलकर वह बरामदे में चला आया था। पीछे हॉल के अंदर बुफे खाना चल रहा था। छुरी काटों की आवाजें आ रही थीं, हल्के हल्के वार्तालाप की, स्त्रियों की टुनटुनाती हंसी की। पृष्ठ संख्या 133। मिसेज भगत अभी तक हॉल में नहीं पहुंची थी और महेंद्र बरामदे में बाहर निकल आया था। महेंद्र इस इंतजार में था कि मिसेज भगत शीघ्र ही दाईं ओर से स्कूल की एक अध्यापिका के कमरे में से निकलकर आएंगी, तभी दोनों हॉल के अंदर खाना खाने जाएंगे। उसे यह सोचकर बार बार गुदगुदी सी भी होती कि पप्पू को इस पब्लिक स्कूल में दाखिला करवा देने से सामाजिक सीढ़ी पर वह एक और कदम ऊंचा उठ आया था। अब मैं भी बड़े सरकारी अफसरों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। सरकारी नौकरी के भी स्तर होते हैं, परतें होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। शहर की तंग गलियों में से निकलकर अपने दफ्तर को जाने वाला क्लर्क भी सरकारी नौकर है। कंधे पर झूलते बालों वाली युवतियों महिलाओं के साथ अपनी मोटर में बैठकर रंगीन थर्मस, फलों की टोकरियाँ, चॉकलेट, बियर की बोतलें अपने साथ लेकर स्कूल को आने वाले लोग भी सरकारी नौकर हैं। उस नई प्रमोशन के मिलने से महेंद्र का स्तर बदल गया था। उसे बार बार लगता जैसे अंधेरे कूप में से निकलकर रोशनी में आ गया है। पिछला साल भर यातना भोगते बीता था। एक के बाद एक मूर्खता होती रही थी। जहाँ सबसे पहले उसे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था, वहाँ वह कभी नैतिकता के तो कभी सेक्स के पचड़े में पड़ता रहा था। अपनी पोजीशन के मुताबिक ही अपने जैसे लोगों के बीच रहना मुनासिब होता है। और पोजीशन है तो तुम सब कुछ हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। प्रमिला को अपने अभिसार का भेद बता देना इसी दृष्टि से मूर्खता थी। यदि करियर बनाना हो तो वैसी लिजलिजी भावुकता नहीं चल सकती, वैसी घिसी पिटी पुरानी नैतिकता भी नहीं चल सकती। प्रमिला को जहाँ अपने अभिसार का भेद बता देना मूर्खता थी, वहाँ सुषमा के साथ अभिसार चलाना भी मूर्खता थी। लड़की उसी के दफ्तर में कैशियर थी, जबकि उसकी पोजीशन का आदमी किसी दूसरे सरकारी अफसर की पत्नी से अभिसार चला सकता था। पिछले साल की हरकतों के बारे में सोचते हुए उसे लगा जैसे वह पचड़े में से निकल कर आया है और पहली बार हल्का फुल्का महसूस करने लगा है, मानो बहुत से बोझ वह नीचे फेंक आया है। प्रमिला के बारे में सोचकर उसके मन में कभी बेचैनी सी उठती रही थी, पर इस बेचैनी को अब वह समझ सकता था। बरसों की एक आदत को तोड़कर नई आदत डालना कौन सा आसान काम है। एक बार वह पतलून कोट छोड़कर खादी पहनने लगा था। महीनों तक वह आंखें नीची किए सड़कों के किनारे किनारे चलता रहा था, ताकि उसे कोई देख न ले। मन में तरह तरह के नैतिक प्रश्न उठते रहे थे, पर बात नैतिकता की नहीं थी, बात केवल आदत बदलने की थी। अब आदत सचमुच बदल गई थी। दृष्टि के साथ आदत बदल जाती है, और जब आदत बदल, पृष्ठ संख्या 134, जाए तो बेचैनी भी दूर हो जाती है। क्षण भर के लिए यह सोचकर कि यदि प्रमिला घर पर बनी रहती तो क्या स्थिति होती, उसके बदन में सिरहन सी हुई। क्लर्की के जमाने की पत्नी के रूप में प्रमिला ठीक थी, लेकिन इस पोजीशन के अनुरूप वह नहीं थी। वह इस सोसाइटी के अनुकूल नहीं बनी थी। ऐसे स्थानों पर प्रमिला को साथ लाना कंधे पर गठरी ढोने के बराबर ही होता। पार्टी में आओ और गठरी को उतार कर किसी कुर्सी पर या सोफे पर रख दो, या एक और गुमसुम बुत बनी बैठी रहती। ना किसी से हूँ ना हाँ, बिटर बिटर कभी एक के मुंह को तो कभी दूसरे के मुंह को ताकती रहती। और पार्टी के बाद जब जाओ तो गठरी को उठाकर फिर से कंधे पर रख लो। लोग भी दबे दबे हंसते रहे। यह सोसाइटी प्रमिला के बस की नहीं थी। यहाँ स्त्रियों की अपनी विशिष्ट रुचि थी। कपड़े पहनने, बन संवर कर रहने की, हल्का फुल्का वार्तालाप करने की, हंसने बतियाने की, यहाँ चारों ओर सुचारुता बिखरी पड़ी थी। क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं, वह सब जानती थी। प्रमिला के कट्टरपंथी विचार अंत तक नहीं टूटे थे और अंत में वही पिछड़ कर पीछे रह गई थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि प्रमिला आज की दुनिया के मुताबिक बन सके, सरकारी अफसरों की स्त्रियों की तरह हंस बोल सके, चहक सके, तरह तरह के विषयों पर बातचीत कर सके, पर उसके संस्कार बहुत पक्के थे, उन्हें तोड़ पाना असंभव था। और अब हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। वह वैसे ही प्रमिला को पीछे छोड़ आया था जैसे अपने गली वाले मकान को छोड़ आया था जहाँ वह क्लर्की के जमाने में रहा करता था, वैसे ही जैसे अपनी पुरानी साइकिल को छोड़ आया था, अपने क्लर्क दोस्तों की मंडली को छोड़ आया था जो हर शाम चाय की चुस्कियों के साथ घंटों अपने अफसरों की ही बातें करते रहते थे। प्रमिला पत्नी के नाते उनके मुकाबले में दूर तक आई थी, पर यहाँ तक वह भी साथ नहीं दे पाई थी। उसे साथ साथ घसीटते लाना उसके प्रति भी अन्याय होता। अब जो प्रमिला लौट आई तो जिंदगी का आखिरी चांस भी खो जाएगा। इसके विपरीत फिर से वही घिस घिस शुरू हो जाएगी। उसे बरसों पहले मोहल्ले की याद आई जहाँ उसके घर के पिछवाड़े रहने वाला धोबी शाम को नदी पर से लौटने पर अपने दोनों गधों को एक ही रस्सी के साथ बांध दिया करता था। एक पैर गधे का दूसरे के एक पैर से बांध देता। लगता दोनों गधे स्वतंत्र खड़े हैं, पर दोनों में से कोई भी 3 गज से ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाता। रात भर दोनों गधे एक दूसरे को ही काटते अथवा खुजलाते रहते थे। इसी प्रकार का रिश्ता पिछले 12 साल तक चलता रहा था और अब महेंद्र फिर से उसमें पड़ना नहीं चाहता था। उसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुषमा के पास पृष्ठ संख्या 135 उसका अभिसार भी असंगत बात थी। महेंद्र का मन बार बार कहता, अच्छा हुआ जो पिंड छूट गया, जो बात बाहर निकल जाती तो उसका नाम सदा क्लर्क लड़कियों के साथ ही जोड़ा जाता। किसी अफसर की स्त्री उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। 2 दिन पहले महेंद्र अपना नया ओवरकोट बांह पर डाले, हाथ में छोटा सा सूटकेस उठाए रेलवे स्टेशन के आंगन में से निकला था तो 3 टैक्सियों वाले उसकी ओर लपके थे। जमाना था जब इसी रेलवे स्टेशन पर उतरते समय वह धक्के खाता बसों के पीछे भागा करता था। अब टैक्सियों वाले अपने आप पहचानने लगे थे कि यह आदमी उस श्रेणी का है जिसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। आंगन में उसने घूमकर पीछे की ओर देखा था। रेलवे स्टेशन का आंगन सुंदर वस्त्रों वाले पुरुष स्त्रियों से छिटका था। कुछ लोग बाहर निकलते ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो रहे थे। महेंद्र के लिए स्कूल के वार्षिक उत्सव पर आने का यह पहला अवसर था, बल्कि प्रमोशन के बाद घर से बाहर निकलने का ही यह पहला अवसर था। टैक्सी स्टैंड पर रेलवे फाटक को घेरे टैक्सियों के ड्राइवर खड़े थे। रेलवे स्टेशन में से निकलने वाले मुसाफिर धड़ाधड़ टैक्सियों में बैठकर सामने पहाड़ों की दिशा में निकलते जा रहे थे। जिस वक्त महेंद्र गेट के पास पहुंचा, उस वक्त 2 टैक्सियां खड़ी थी। गेट पार करते करते उनमें से भी एक टैक्सी निकल गई थी। एक ही टैक्सी वहां खड़ी थी और महेंद्र मन ही मन डर रहा था कि ड्राइवर किराया बढ़ा देगा। तभी एक महिला हाँफती हुई गेट की ओर से भागती चली आई थी। आपको कोई ऐतराज तो नहीं अगर हम दोनों एक ही टैक्सी कर लें? आप भी स्कूल में जा रहे हैं ना? बड़े बड़े कॉलरों वाला भूरे रंग का ओवरकोट कंधों पर डाले रूखे कटे बालों वाली एक 31 वर्ष की महिला उसके पास खड़ी हाँफ रही थी। मुझे भी स्कूल में ही जाना है। यदि हमने टैक्सी फौरन नहीं कर ली तो यह टैक्सी भी हाथ से निकल जाएगी। चलिए इसी में बैठ जाते हैं। यहाँ टैक्सियाँ आसानी से नहीं मिलतीं, और वह इस वक्त का इंतज़ार किए बिना कि महेंद्र क्या निश्चय करता है, कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ भी चुकी थी। महेंद्र, ज़रूर ज़रूर, कहता हुआ तनिक झेप कर आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठने जा रहा था, जब महिला ने तनिक हंसकर उसे पीछे के सीट पर अपने साथ ही बैठने को कहा। पृष्ठ संख्या 136। आइए आइए, आप भी पीछे बैठिए, आप आगे क्यों बैठना चाहते हैं? और महेंद्र खिसिया कर पीछे की सीट पर आकर बैठ गया था। पुराने संस्कार जल्दी नहीं टूटते, मन की दरारों में कीड़ों की तरह दुबके बैठे रहते हैं। स्त्रियों से वह अब भी वैसे ही झेपता था जैसे सुषमा से जान पहचान के पहले झेपा करता था। इतनी दूर से बच्चों को मिलने आना बड़े झंझट का काम है। महेंद्र ने वार्तालाप शुरू करने की चेष्टा करते हुए यह अपनी झेप मिटाने की कोशिश करते हुए कहा। उसने सोचा सिगरेट निकाल कर सुलगा ले, झेप के समय सिगरेट बड़ा सहायक होता है। लेकिन यह सोचकर कि बंद कार में सिगरेट सुलगाना शायद उस महिला को अरुचिकर लगे, वह एक ओर को दबक कर बैठ रहा था। पर इसी बीच मिसेज भगत ने अपना वेनिटी बैग खोल लिया था और सिगरेटों की डिबिया निकाल कर सिगरेट सुलगा लिया था। पहले दो जगह गाड़ियां बदलो, फिर मोटर में जाओ, डॉट डॉट, महेंद्र ने इस अंदाज में कहा मानो बरसों से स्कूल के चक्कर काट रहा हो। मैं तो लौट कर जाती हूँ तो कहती हूँ अब कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, पर जब यहाँ आ जाती हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। आपके कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? एक लड़का है, इसी साल दाखिल हुआ है, महेंद्र ने कहा और आंख उठाकर महिला की ओर देखा। बड़े बड़े कॉलरों वाले ओवर कोट के जेब में हाथ डाले, सिगरेट वाले बाएं हाथ की कोहनी दरवाजे के साथ लगाए वह सीट के सिरे पर निश्चिंत सी बैठी थी। लगता था सचमुच सुहावने मौसम का आनंद ले रही है। उसके बैठने के ढंग से स्निग्धता का भास होता था, अल्हड़पन का भी, अलसाहट का भी, चुस्ती का भी। मैं तो चाहती भी नहीं थी कि बच्चों की इतनी दूर बोर्डिंग स्कूल में डालूं, लेकिन डॉट डॉट लेकिन डॉट डॉट लेकिन पर आकर महिला रुक गई। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से महेंद्र की ओर देखकर वह मुस्कुरा दी और दूसरी ओर देखने लगी। अल्हड़पन के साथ साथ महेंद्र को मिसेज भगत में एक प्रकार की सुचारुता भी लगी। मोटर में उनके पैरों में बढ़िया किस्म की एक टोकरी रखी थी जिसमें फल थे, दूध पाउडर का एक डिब्बा था, नीले रंग की एक थर्मस थी, दो साफ सुथरे नैपकिन थे, एक लाल रंग की फैशनेबल सी जर्सी रखी थी। ओवरकोट के बावजूद मिसेज भगत ने पैरों में सैंडल पहन रखे थे। उनके नाजुक से गोरे गोरे पैर सैंडलों में महेंद्र को बड़े सुंदर लगे। पृष्ठ संख्या 137। मोटर में बैठते ही महेंद्र में स्थिरता आ गई। उसे लगा था जैसे स्थिति उसके काबू में आ गई है। महेंद्र की स्थिति उस एक्टर की सी हो रही थी जो स्टेज पर जाने से पहले घबरा रहा हो, पर स्टेज पर आ जाने पर उसकी सभी वृत्तियां यथास्थान एकाग्र हो जाएं और उसे लगे जैसे स्थिति पर उसने पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। वर्मा जी ने जब प्रमोशन की चिट्ठी उसके हाथ में देकर उससे हाथ मिलाया था, तब भी ऐसी ही भावना उसके मन में उठी थी। उसे लगा था जैसे वह दफ्तर का धुरा है और दफ्तर का सारा संचालन वह बड़े सुविधे से कर सकता है। हवा में तैरता सा घर लौटा था। मिसेज भगत से वार्तालाप शुरू होते ही महेंद्र ने छुट्टी की सी हिलोर का अनुभव किया था और अब वह मोटर हरी भरी पहाड़ियों में जगह जगह मोड़ काटती हुई आगे बढ़ने लगी थी और बाएं ओर की ऊंची पहाड़ी का शिखर प्रातः की हल्की सी लालिमा से ढका था और चारों ओर नहाया नहाया सा लग रहा था, तो उसके बदन में फिर से अनूठे उल्लास की लहर उठी। तभी उसे पहली बार लगा था कि वह वर्षों से किसी गहरे अंधेरे कुएं में पड़ा रहा है, जिसमें से अब पहली बार निकलकर खिले प्रकाश में आंखें खोल रहा है। स्फूर्ति की लहर बार बार उसके अंदर दौड़ रही थी। तृप्ति का सा भाव जीवन में आने लगा था। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति का संचार के साथ तारतम्य कायम हो जाता है, कहीं कोई तार मिल जाता है और अंदर की सारी छटपटाहट शांत हो जाती है। इसके बाद अपने आप ही वार्तालाप में गति आ गई थी और वह एक दूसरे से खुलने लगे थे। मिसेज भगत हवाई सेना के किसी अफसर की पत्नी थी जिसका दूर एक ऐसे स्टेशन पर तबादला हो गया था जहां पर वह अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख सकता था। इसी कारण मिसेज भगत दिल्ली में रहती थीं और अपने दोनों बच्चों, एक लड़के और एक लड़की को यहाँ दाखिल करवा दिया था। मिसेज भगत में बच्चों का सा खिला खिलापन था जो न प्रमिला में था न सुषमा में। उनमें बड़ी उन्मुक्तता थी। अपने और पराये का भेद भी मिसेज भगत नहीं करती थी। थोड़ी ही देर में वह महेंद्र से ऐसे हिल मिल गई थी मानो बरसों की जान पहचान हो। मिसेज भगत की रुचियां भी अधिक परिष्कृत थीं। उनमें एक सहज हास्य की भावना थी, एक अलबेलापन था जो सीधा प्रकृति की देन जान पड़ता था। बहती हवाओं, सरसराते वृक्षों और मधमाती बेलों की देन। तभी एक जगह मिसेज भगत ने मोटर रुकवा दी थी। रुको रुको ड्राइवर, उसने आग्रह किया था, मैं तो झरने का पानी पीऊंगी। मैं जब भी आती हूँ यहाँ पानी पीती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पृष्ठ संख्या 138, ठंडा ठंडा आप भी पीजिए। और वह मोटर के रुकने पर झट से बाहर निकल गई थी और अपनी साड़ी बचाती हुई दाईं ओर को सड़क के किनारे जा पहुंची थी, जहां एक बड़ी सी चट्टान में से, जिसे एक विशालकाय पेड़ अपनी ओट में लिए था, एक झरना फूट पड़ा था और उसका पानी एक बड़े से हौज में गिर रहा था। और वहां से निकलकर पहाड़ी के साथ साथ सड़क के किनारे किनारे नीचे की ओर बह गया था। बहुत ठंड है उई, मिसेज भगत ने कहा था और बर्फ ठंडे जल से मुंह धोया था और बाल भिगो लिए थे। और हंस हंस कर साड़ी बचाती हुई आगे झुक कर अपनी अंजुली में मुश्किल से 2 घूंट पानी लेकर पी गई थी और सारा वक्त हंसती रही थी। तभी महेंद्र को पहली बार लगा था कि झरने की कल कल ध्वनि और मिसेज भगत के हास्य में कहीं कोई गहरा संबंध है, कहीं गहरे में दोनों जुड़े हुए हैं। काश कि मैं पेंटर होती। वहीं सड़क के किनारे खड़े खड़े सामने प्रातः की धूप में खिले पहाड़ों की ओर देखते हुए मिसेज भगत ने कहा, मैं ये पर्वत मालाएं उतार लेती, अपनी कैनवस पर उतार लेती। हवा में पतझड़ की महक थी। उसी समय एक छोटा सा सूखा पत्ता उड़ता हुआ मिसेज भगत के दाएं कंधे पर आकर अटक गया। हाय, आपने कभी सुबह 7 बजे या इससे भी पहले इन पहाड़ों का दृश्य देखा? वह चमके जा रही थी। अपने होटल के कमरे में से दूर दूर तक यह नजारा नजर आता है। मैं उठकर सबसे पहले यही दृश्य देखती हूँ। सुबह 7:30 और 8 के बीच पहाड़ों की चोटियों पर बादल नहीं होते। बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ इतनी साफ और इतनी नजदीक दिखाई देती हैं कि डर लगता है। तभी महेंद्र को लगा था जैसे मिसेज भगत की पलकों पर ओस की बूंदें उतर आई हैं और चमकने लगी हैं। तभी महेंद्र को उनकी प्रत्येक भंगिमा में आकर्षण नजर आने लगा था। तभी उसे लगा था जैसे उस दृश्य का अक्स मिसेज भगत की काली चमकती आंखों में पड़ रहा है। मिसेज भगत के नाक नक्श पतले और नाजुक थे। तभी वह उसकी तुलना किसी लता से या फूल की पंखुड़ियों से या झिलमिलाते ओस की बूंदों से करने लगा था। तभी महेंद्र को अपनी पुरानी धारणा याद हो आई थी कि स्त्री प्रकृति का ही स्वरूप बनकर पुरुष के जीवन में आती है। प्रकृति की सुषमा का, उसके सौरभ का, उसके अनंत सौंदर्य का। तभी तो उसके हंसते होठों में उसे फूटती कलियों का भास होता है। महेंद्र अपने को झुठलाते हुए मिसेज भगत की आंखों में किसी दैवी निमंत्रण को पढ़ने लगा था। पृष्ठ संख्या 139। उसे फिर से लगने लगा था जैसे उसके अंदर की गांठें खुलने लगी हैं, जैसे वह किन्हीं लहरों पर जीवन की दूरियां लांघने लगा है, जैसे उसके अंदर फिर से कुछ खुलने लगा है, फिर से कोई जीव उत्सुक प्यासा व्याकुल बरबस बहते झरनों की ओर भागने लगा है। मिसेज भगत ने ठंडी सांस भरी और मोटर में आ बैठी थी। उनके मोटर में बैठ जाने पर महेंद्र को परम स्निग्धता का भास हुआ था। गाड़ी चली तो सहसा महेंद्र को नाटा याद आ गया। ना जाने क्यों ऐसा हुआ, पर उसे लगा जैसे नाटा उसके सामने खड़ा है और उसका मजाक उड़ाने लगा है। साले, हमसे छिपाता है, तुझे इस औरत से आशनाई हो रही है, क्योंकि इसका पति दिल्ली से बहुत दूर है और यह अकेली रहती है, और तेरे लिए एक चांस खुल रहा है। इसकी आंखों में न प्रकृति झांकती है और न आकाश की नीलिमा। अब तू अपने को झुठला रहा है, फिर से झुठलाएगा ... पर महेंद्र ने सिर झटक दिया। यह कामुकता नहीं थी, यह प्रकृति प्रेम था। यह ब्रह्मांड की आत्मा की धड़कन सुन पाने का व्याकुल प्रयास था, चेष्टा थी ... मोटर में बैठते ही मिसेज भगत ने फिर से सिगरेट जला ली थी और सीट में फंस कर बैठ गई थी। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आई? उन्हें भी ले आते, वह भी बच्चे से मिल जाती। महेंद्र चौंक सा गया, उसे इस प्रश्न की आशा नहीं थी। उसे शक गुजरा, जैसे मिसेज भगत प्रमिला को जानती हैं और उसके घरेलू मामलों से परिचित हैं। पत्नी आजकल मायके में है। उसने जवाब देने की औपचारिकता निभाते हुए फिर धीरे से बोला, मेरा गृहस्थ जीवन बहुत कुछ टूटा हुआ है, आपसे क्या छिपाना। कई बार सोचता हूँ मनुष्य के बस में कुछ नहीं रहता, भाग्य ही सब कुछ करता है। क्यों, क्या वह बीमार रहती हैं? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन हमारी गृहस्थी पटरी पर नहीं बैठी है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उसे जो आशाएं मुझसे थी, मैं उन पर पूरा नहीं उतरा हूँ, दोष सरासर मेरा ही है, डॉट डॉट। और महेंद्र ने ठंडी सांस ली और अवसादपूर्ण आंखों से मिसेज भगत की ओर देखा। बच्चे को स्कूल में डालने का एक कारण यह भी था कि हमारे बीच तनाव का बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा था। महेंद्र बड़ी निष्पक्षता से अपने घर के बारे में बात कर रहा था। किस उदारता, पृष्ठ संख्या 140, और विनम्रता से सारा दोष अपने ऊपर ले रहा था। अपने जीवन की विषमता का कितना तटस्थ मूल्यांकन कर रहा था। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, ठीक ही तो था, यही तो बात थी, मूल में यही तो था, और क्या था। महेंद्र ने कनखियों से मिसेज भगत की ओर देखा। उनकी आंखों में उसे हल्की सी सहानुभूति की झलक मिली और महेंद्र को मिसेज भगत की आंखें और अधिक सुंदर और अधिक हृदयग्राही नजर आने लगी थीं। मिसेज भगत की आंखों के नीचे हल्के हल्के साए थे, जिससे आंखें और भी बड़ी बड़ी, और भी अधिक संवेदनशील और गहरी, और भी अधिक सुंदर लगती थीं, मानो आंसुओं में घुलकर आई हों। उसे लगा जैसे मिसेज भगत के मन में भी कोई क्लेश है, भाग्य का कोई जख्म है, जिससे आंखें इतनी गहरी और संवेदनशील हो गई हैं। महेंद्र का मन चाहा कि मिसेज भगत को सांत्वना दे, उनका क्लेश हर ले, उनकी छोटी सी छुट्टी को खुशियों से भर दे। पहले जो चुलबुलापन उस महिला की आंखों में नजर आने लगा था, अब महेंद्र को वहां गहरी वेदना और अवसाद का भाव नजर आने लगा था, जिसे बाहरी अल्हड़पन और चुलबुलापन छिपाए हुए था। यह आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और समय बीतता पता भी नहीं चला था। यहाँ तक कि जब टैक्सी पहाड़ियाँ लांघ कर स्कूल के दरवाजे तक पहुँची थी, तो महेंद्र की चेतना में से स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाला उसका बेटा पप्पू बहुत कुछ निकल चुके थे। अतिथि भवन में ही बच्चों के माँ बाप इकट्ठे हो रहे थे, यहीं पर उनके बच्चे भी उनसे भागते हुए आकर चिपट रहे थे, यहीं पर रेणु और अशोक भी आए थे। मिसेज भगत के बच्चे और महेंद्र उनसे बड़े चाव से मिला था और देर तक उनके साथ खेलता बतियाता रहा था। वह बार बार उठ उठ कर खिड़की के पास तो जाता और अपने बच्चे के बारे में बार बार कहता कि न जाने वह क्यों अभी तक नहीं पहुंचा है। पर मन ही मन वह नहीं चाहता था कि पप्पू इस समय उससे मिलने आए। मिसेज भगत के साफ सुथरे, चुस्त दुरुस्त बच्चों के सामने पप्पू की आदतें बड़ी भावनी लगेंगी। पप्पू कभी भी उसके साथ इस तरह खेला चहका नहीं था, जिस तरह मिसेज भगत के बच्चे अपनी माँ के साथ खेल चहक रहे थे। और अच्छा ही हुआ, घंटी बजने तक वह नहीं आया। और तब बच्चे अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी अपनी डॉर्मेट्री की ओर जाने लगे थे। पर वास्तव में पप्पू आया था ब्रिटेन से। पिता के स्कूल में पहुंचने की खबर पाकर पप्पू का मन उत्तेजित हो उठा। बच्चे के मन में उठने वाले उद्गारों की थाह पाना कठिन है, लेकिन 6 महीने के एकाकीपन और सूनेपन के बाद पिता के पृष्ठ संख्या 141 आने की खबर पाकर पप्पू के मन में भूचाल सा उठने लगा था। अंदर ही अंदर कुछ घुमड़ने लगा था, यह आदमी मुझे पकड़कर झिझोड़ेगा, क्या करेगा। उसका कलेजा फटने को हो आया था। पहले तो बुत का बुत बना खड़ा था, फिर धीरे धीरे मेट्रन के आग्रह करने पर सरकता हुआ अतिथि भवन की ओर बढ़ गया था। और अतिथि भवन के बाहर पहुंचकर वह ठिठका खड़ा रह गया था। अनजाने में ही दूर ही ठिठका रहा था और एक पत्थर की ओट में खड़ा अतिथि भवन के बरामदे की ओर देखने लगा था, जहां बहुत से मेहमान अपने कमरों से बरामदे में आ जा रहे थे। बरामदे के पीछे ड्राइंग रूम था, जहां महेंद्र देर तक मिसेज भगत के बच्चों के बाल सहलाता और मिसेज भगत के सामने उनके बच्चों की तारीफ करता रहा था। तभी पप्पू को अपने पिता का चेहरा नजर आया था। महेंद्र उठकर बरामदे में खुलने वाली खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया था और बाहर की ओर देखने लगा था। और तभी पत्थर के पीछे से ही पप्पू भाग खड़ा हुआ था और सरपट भागता हुआ अपनी डॉर्मेट्री में लौट गया था। महेंद्र बरामदे में खड़ा देर तक पिछले 2 दिनों के बारे में सोचता रहा। तभी मिसेज भगत दूर से आती दिखाई थी। चौड़े लाल बॉर्डर और पल्लू वाली साड़ी पहने थी और कंधों पर काले रंग का क्लोक डाले थी और आंखों पर काले रंग का चश्मा था। महेंद्र का मन खिल उठा। खड़क के किनारे किनारे पेड़ों के नीचे दोपहरी की घनघनाती धूप छांव के बीच मिसेज भगत चली आ रही थी। तभी मिसेज भगत ने हाथ उठाकर हिलाया। महेंद्र ने बड़े उत्साह से अभिवादन के उत्तर में हाथ हिलाया और उन्हें लिवा लाने के लिए बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर उस ओर जाने लगा। कितना अच्छा मौसम है ना, मिसेज भगत ने चाहक कर कहा। मेरा तो जी चाहता है सारा वक्त धूप में घूमती रहूँ, पहाड़ियाँ उतरू चढ़ूँ। चलिए लंच के बाद बच्चों को पिकनिक पर ले चलें। मिसेज भगत की सांस तेजी से चल रही थी। वह बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले रुक गईं। यह नीचे ग्राउंडों के नीचे फॉरेस्ट रोड है, बहुत अच्छी, बच्चों को ले चलेंगे। यहाँ टक शॉप से कुछ खाने की चीज़ें ले लेते हैं डॉट डॉट, और फिर घूमकर बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं। 3 बजे से 5 तक बच्चों की छुट्टी है, वे माँ बाप के साथ घूम सकते हैं। पृष्ठ संख्या 142। 5 तक तो हम लौट ही आएंगे। बहुत बढ़िया रहेगा, मैंने यहाँ का फॉरेस्ट रोड देखा भी नहीं है, महेंद्र बोला। बहुत बढ़िया है, गहरा गहरा अंधियारा और सारा वक्त साय साय की आवाज़ आती रहती है। वहाँ घूमते हुए मुझे कोलरिज की कविता कुबला खान याद आती रहती है, आप देखेंगे तो आपको भी याद आएगी डॉट डॉट। महेंद्र को यह प्रोग्राम अच्छा लगा। मिसेज भगत बड़ी बेतकल्लुफी से बात करती थीं। उनके वार्तालाप में मैत्री का, आत्मीयता का पुट था, पर महेंद्र को अभी तक इस बात का संकेत नहीं मिला था कि वह उसे लिफ्ट दे रही हैं या नहीं। पिकनिक के सुझाव के साथ बच्चों को साथ में ले जाने की बात भी थी। बच्चों को आड़ के लिए ले जाया जा रहा था या इरादा ही केवल बच्चों को पिकनिक कराने का था? जाहिर है, जहाँ इतने लोग बाहर से आए हों, वहाँ अकेले में वह महेंद्र के साथ कैसे घूम फिर सकती होंगी? और यह सोचकर महेंद्र का मन आश्वस्त हो गया। मैं सोच रहा था, बच्चों का ले जाना क्या ठीक रहेगा? बच्चे अपने दोस्तों साथियों के साथ रहेंगे तो खेलेंगे कूदेंगे, हमारे साथ रहेंगे तो बंधे बंधे महसूस करेंगे, महेंद्र ने साहस करके कह दिया। मिसेज भगत ने आंख उठाकर देखा, फिर हंसकर बोली, यही फर्क होता है मर्दों और औरतों में। मर्द बच्चों से पिंड छुड़ाते फिरते हैं, औरतें अपने बच्चों के पीछे भागती फिरती हैं, उनके पीछे पागल हुई फिरती हैं। महेंद्र खिसिया कर चुप हो गया, उससे भूल हो गई थी। बच्चों की खातिर, बच्चों से मिलने ही सब माँ बाप यहाँ आए हैं। बच्चों को साथ लेकर घुमाना फिराना ही यहाँ का चलन था, उससे भी इसी बात की आशा की जा रही थी। दोनों ने डाइनिंग हॉल के अंदर प्रवेश किया। हॉल लोगों से खूब भर गया था, लोग खड़े खड़े दूसरे से बतियाते खाना खा रहे थे। महेंद्र ने बड़ी समझदारी का काम किया था, जो अपने साथ 2 सूट लेता आया था और एक नया ड्रेसिंग गाउन खरीद लाया था, वरना सारा वक्त उसके मन में हीनता का भाव बना रहता। हॉल के बीचों बीच 2 लंबे मेज लगा दिए गए थे, सफ़ेद चादरों से ढके, और उन पर प्लेटों में तरह तरह के व्यंजन रखे थे। हाल तरह तरह के धीमे वार्तालाप और हास्य से गुनगुना रहा था। महेंद्र को अच्छा लगा। स्त्रियों के श्रृंगार से उठने वाली महक हाल में व्याप रही थी। हाल में पहुंचकर मिसेज भगत पृष्ठ संख्या 143 एक्सक्यूज मी कहकर उससे अलग हो गईं। छोटी छोटी बातें करने की अपनी कला है, अपना आर्ट है। प्लेट हाथ में लेकर खड़े खड़े छोटे छोटे विषयों पर बातें करना, छोटे छोटे चुटकुले कहना, हास्य और व्यंग्य के छोटे छोटे फिक्रे कसना, ऊपर वाली जमात के लोगों की विशिष्टता है। स्त्रियों का तो यह अतिरिक्त आभूषण है, मुस्कुराती रहती हैं और बेझिझक छोटे छोटे वाक्य बोलती रहती हैं। बात छू भी जाए तो पता नहीं चले कि छूने के लिए कही गई है। यह छोटा छोटा वार्तालाप उनका कवच भी है, जो उन्हें पुरुष की धृष्टता से बचाए रखता है। वार्तालाप का शिष्टाचार निभाते हुए वह उसे अपने से दूर रखे रहती हैं। महेंद्र ने वाक्पटुता के इस गुण को आज अपने में भी पहचाना था और पहचानते ही उसमें अधिक साहस का संचार हो गया था। प्लेट उठाओ, उस पर खाने का सामान रखो, फिर चम्मच या कांटा लेकर एक ओर खड़े हो जाओ, बतियाते भी जाओ और खाते भी जाओ। एक व्यक्ति से बात कर चुको तो सरक कर दूसरे किसी व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो जाओ। लोग सरकते हुए एक से दूसरे व्यक्ति के पास आ जा रहे थे। अनजाने अपरिचित लोग भी अकेले महसूस नहीं कर रहे थे। यहाँ तुम बड़े से बड़े फौजी अफसर के साथ भी प्लेट हाथ में लिए बतिया सकते हो, सुंदर से सुंदर महिला के साथ भी। रात के वक्त टैटू बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। आपने देखा, लाल कोट पहने गदराए शरीर वाली एक महिला महंत से कह रही थी। टैटू तो इस स्कूल की स्पेशलिटी है। महिला ने मांस की बोटी को कांटे से उठाकर दांत तनिक आगे बढ़ाकर उस पर से गोश्त का टुकड़ा नोचते हुए कहा। अब की बार स्टाफ का ड्रामा अच्छा रहा, पर साल ड्रामा अच्छा नहीं था। मैंने सुना है पहले हेडमास्टर ज्यादा एक्टिव थे, महेंद्र ने जोड़ा। मिस्टर लायनल? हाँ, महिला ने कांटे पर से छिछड़ा तोड़ते दाएं बाएं सिर हिलाकर हामी भरी। बहुत ध्यान रखते थे, 24 घंटे स्कूल में घूमते रहते थे। फिर लाल कोट और गदराए शरीर वाली महिला अपनी प्लेट में मीट के और टुकड़े डालने के लिए मुस्कुराकर मुड़ गई थी और प्लेट भरकर दूसरी ओर हो ली थी। सभी मेहमान एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे सरक रहे थे, मानो वे स्वयं ना चलते हो। नीचे का फर्श सारा वक्त घूमता रहता हो और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता हो। दाईं ओर से मोटे मोटे शीशों वाला चश्मा पहने स्कूल की उस्तानी मिस गुणवती चली आ रही थी। पप्पू को स्कूल में दाखिल कराते समय बच्चों को इसी उस्तानी के सुपुर्द किया गया था। पृष्ठ संख्या 144। पप्पू अब तो कुछ कुछ खुलने लगा है, गुणवती मोटे मोटे चश्मों में से महंत की ओर झुककर मुस्कुरा कर बोली। पहले तो सारा वक्त उदास सा एक कोने में खड़ा रहता था, यहाँ तक कि हम लोग घबरा गए थे कि इस बच्चे का क्या करें। मिस गुणवती हंस दी। पढ़ाई में कैसा है? महंत ने कौर मुंह में डालते हुए पूछा। हम अभी तो इसी कोशिश में है कि बच्चों के साथ हिल मिल जाए, अभी भी बड़ा अलग अलग रहता है। मिस गुणवती स्थिति समझती हुई सी बोली। संभव हो तो पहले आप महीने 2 महीने में एक बार आ जाया कीजिए। यूं तो हम यहाँ माँ बाप का आना पसंद नहीं करते, इससे बच्चे के मन उत्तेजित हो जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिरता भंग हो जाती है। मगर किसी केस में माँ बाप का आना जरूरी होता है। यही सोचकर मैं नहीं आया, इसी कारण उसकी माँ भी नहीं आ पाई, महेंद्र ने कहा। इस वाक्य पर गुणवती ने आंख उठाकर अपने चश्मे के बीच से महेंद्र की ओर देखा। महेंद्र झेप गया। क्षण भर में ही वह समझ गया कि युवती उसकी निजी स्थिति को जानती है। जब से महेंद्र स्कूल में आया था, किसी उस्तानी ने पप्पू की माँ के बारे में नहीं पूछा था। जाहिर है खबर यहाँ तक पहुँच चुकी थी। पहुँची क्यों ना होगी, पप्पू का व्यवहार ही सभी खबरें पहुँचा रहा होगा। पर इससे महेंद्र हतोत्साह नहीं हुआ। इस माहौल में उसे लगा पति पत्नी के एक दूसरे से अलग हो जाने का कुछ कुछ बांका मूल्य ही आंका जाता है। इसमें कुछ कुछ आधुनिकता की पुट है और कुछ नहीं तो मनुष्य चर्चा का विषय तो बन ही जाता है। पप्पू से कह जाइए कि आपको खत लिखा करे, मिस गुणवती कह रही थी। वह खत कैसे लिखेगा, छोटा सा तो है, गुणवती हंसती। छोटे बच्चों के लिए हम बोर्ड पर खत की इबारत लिख देते हैं और बच्चे उसे नकल कर लेते हैं, पर पप्पू ने कभी खत नहीं लिखा, आप कहेंगे तो मान जाएगा। आपको भी तो उसके खतों का इंतजार रहता होगा। फिर गुणवती कुछ कहने जा रही थी जब सहसा रुक गई, मानो पप्पू की कोई बात बताने जा रही हो, और सहसा यह सोचकर कि स्थान और अवसर उसके उपयुक्त नहीं है, चुप हो गई हो। पृष्ठ संख्या 145। क्या है, आप कुछ कहने जा रही थी, महेंद्र ने कहा। मिस गुणवती ने एक बार फिर चश्मों के पीछे से महेंद्र की ओर देखा और छीड़ सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। उसे जरूर खत लिखते रहिएगा और कभी कभी उसे मिलने आ जाया करें, गुणवती आगे बढ़ गई थी। दूर से उसकी आवाज किसी अन्य व्यक्ति के साथ बात करती सुनाई थी। कल कुमुद की परफॉर्मेंस देखी थी, हाउ नाइस। मिसेज भगत के साथ तय पाया था कि आयन 3 बजे अतिथि भवन के बाहर बच्चों के साथ मिलेंगे और वहीं से फॉरेस्ट रोड को निकल जाएंगे। कॉफी वह खुद बनवा लेंगी, 2 पैकेट बिस्कुटों के महेंद्र लेते आएंगे, सैंडविच और फल वह अध्यापिका के घर से अपने साथ लेती आएंगी। महेंद्र लंच के कुछ ही देर बाद पप्पू को उसकी डार्मिट्री से लेने चला गया था। पप्पू बरामदे की सीढ़ी पर टांगे लटकाए बैठा था, जबकि बहुत से बच्चे डार्मिट्री के आंगन में फुटबॉल खेल रहे थे। अपने बेटे का हाथ पकड़कर वह डार्मिट्री के पास वाली ढलान उतारने लगा, जो नीचे बड़ी ग्राउंड की ओर जाती थी। वहीं पर अतिथि भवन था। तभी उसकी नज़र दूर स्टाफ क्वार्टर्स की ओर गई, जहाँ खाई के साथ साथ जाने वाली सड़क पर मिसेज भगत अपने दो बच्चों के साथ एक दूसरे रास्ते से अतिथि भवन की ओर जाने के लिए निकल पड़ी थी। अब की बार मिसेज भगत ने क्लैश पहन रखे थे और ऊपर चारखाने का कम्बल नुमा क्लोक था। महेंद्र को लगा जैसे अपने अपने एकाकीपन में दोनों का तार मिलता है। महेंद्र ने कदम तेज कर दिए। उसे पता नहीं चला कब उसके हाथ में से पप्पू का हाथ निकल गया है और कब वह पीछे छूट गया है। महेंद्र ने घूम कर देखा, आगे के दांत टूटे हुए पप्पू के मुंह में से चॉकलेट की लार बहकर टुड्डी तक आ गई और चॉकलेट वाला हाथ चिपचिपा हो रहा था, जिसे वह अपने निकर के साथ पोंछ पोंछ कर साफ कर रहा था। पप्पू को स्कूल में दाखिल हुए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन वह अभी तक ना तो स्कूल का रहन सहन सीख पाया था, न अपने पुराने भोंडे संस्कार छोड़ पाया था। इस पर सामने के दांत टूटे हुए लगता था उसने ना कभी कोई चॉकलेट देखा हो, ना कभी हाथ धोने की तमीज सीखी हो। झेप पृष्ठ संख्या 146 से महेंद्र ने मुड़कर मिसेज भगत की ओर देखा। मिसेज भगत दूर थीं, उन्होंने महेंद्र के बेटे की यह हरकत नहीं देखी थी, लेकिन महेंद्र को खटका हुआ कि शायद उनकी नज़र पड़ ही गई हो। मिसेज भगत के दोनों बच्चे कैसे सलीके से उनके साथ साथ ठुमक ठुमक चले जा रहे थे, और यहाँ पप्पू का एक मोजा टखनों तक ढिलका हुआ, घुटनों पर मिट्टी और निकर पर चॉकलेट का पलस्तर। कोई क्या करे, महेंद्र का मन आया पप्पू को झिंझोड़ दे, मगर उसकी ओर देखते ही उसका मन विरक्त हो उठा। इस पर मेहनत करने से क्या होगा, इसी बालक इसी पप्पू के बारे में वह किसी जमाने में महत्वाकांक्षी हुआ करता था। महेंद्र ने जेब में से रुमाल निकालकर पप्पू का मुंह पोछा, उसके दोनों चिपचिपे हाथ पोछे, फिर महेंद्र से ना रहा गया। बैठे बैठे ही उसने बच्चे को दोनों बाहों से पकड़कर तनिक झिंझोड़ दिया। ऐसे भी कोई खाता है? 8 साल होने को आया है, तुझे किसी ने चॉकलेट खाना भी नहीं सिखाया? पप्पू चुप रहा, पर खड़े खड़े ही वह आंखें मिचकाने लगा, जैसे पहले मिचकाया करता था। बेहद डरा सा वह पिता के चेहरे की ओर देखे जा रहा था और आंखें मिचकाए जा रहा था। बाप की घुड़की से वह बेहद डर जाता था। सहसा उसकी आंखें मूंदने सी लगी थीं और महेंद्र को अजीब सुरसुर सा शब्द सुनाई देने लगा। तभी महेंद्र की नज़र उसके पैरों की ओर गई। पप्पू की पेशाब निकल गई थी और वह निकर में से चू चू कर दाई टांग के साथ साथ बहती सीधी मोजे में चली जा रही थी। सुअर के बच्चे, यह क्या किया? तुझे स्कूल में यह सिखाते हैं? महेंद्र ने कड़क कर कहा, फिर घूमकर उस ओर देखा जिस ओर मिसेज भगत अपने बच्चों के साथ चली जा रही थी। दूर डार्मिट्री के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। नीचे ढलान की ओर मिसेज भगत मोड़ काट कर अपने बच्चों के साथ आंखों से ओझल हो चुकी थी। दाई ओर जहाँ स्कूल की उस्तानी मिसेज नायडू का बंगला था, कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। किसी ने पप्पू की यह शर्मनाक हरकत नहीं देखी थी। पप्पू जोर जोर से आंखें मिचकाए जा रहा था। महेंद्र के लिए कोई चारा नहीं था। वह उठा और पप्पू का हाथ पकड़कर उसे वापस डार्मिट्री की ओर ले चला। डार्मिट्री के आंगन में अभी भी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, जिन्हें देखकर पप्पू पिता का हाथ छुड़ाकर डार्मिट्री के अंदर भाग गया। बरामदे की सीढ़ी पर पृष्ठ संख्या 147 काली कलूटी भारी भरकम एक स्त्री बैठी थी, जो डार्मिट्री के बच्चों की देखभाल करती थी। पप्पू को भागकर अंदर जाते देखकर वह स्थिति को समझ गई और चिल्लाकर किसी को पुकारने लगी थी। मेहतरानी आइयो, 4 नंबर वाले बाबा ने फिर निक्कर में पेशाब कर दी है। फिर बड़बड़ाती हुई बोली, यह लड़का कभी नहीं सीखेगा। तभी महेंद्र आंगन में आ गया था और डार्मिट्री की ओर बढ़ने लगा था। उसे अपनी ओर आता देखकर औरत उठ खड़ी हुई और उसका लहजा बदल गया। आप ही के शहजादे हैं साहिब, आपको तो पहले देखा भी नहीं है। आप पहली बार आए हैं ना? आया पुरानी थी, एक एक बच्चे को, उसके माँ बाप को, बच्चे के सभी भाई बहनों को जो कभी स्कूल में पढ़ते रहे थे जानती थी। सभी बच्चों को बाबा पुकारती थी, डॉर्मेट्री में उसकी हुकूमत थी। साहिब, आप तो बच्चे को ऐसे भूले, इसकी सुध ही नहीं ली। और भी माँ बाप हैं, हर महीने दौड़े आते हैं। फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर हंसकर बोली, जितना हमें बाबा ने परेशान किया और किसी ने नहीं किया। घर वालों से पहली बार बिछुड़ कर आए हैं, इसीलिए मेम साहब नहीं आई। क्षण भर के लिए महेंद्र ठिठक गया। नहीं, वह नहीं आई, वह नहीं आ पाई। बाबा जब आए तो पहले 10-12 दिन तो इनका मुंह ही नहीं खुले। नहू नहा, सारा वक्त कोने में बैठे रोते रहे। आया कहे जा रही थी, दोपहर को बाबा लोग खाना खा के खेलने चले जाएं और यह गेट पर जा खड़े हों, सड़क पर आंख लगाए हुए, रात पड़ जाए यह वही खड़े रहें। हम पूछे तो कहें माँ आएगी। इन्हें देखकर कलेजे में हूक उठती थी। सच कहूँ, यहाँ काम करते 20 बरस हो गए, ऐसा लड़का नहीं देखा। बस गेट से चिपटे खड़े हैं और आंखें सड़क पर लगी हैं कि माँ आएगी। मेट्रेन और हम और क्लास टीचर सभी लोग, हम सोचे करें तो क्या करें, आपको बुलाएं, बाबा को लौटा दें, बड़े साहिब से कहें। फिर सोचें, जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक लड़के को संभाल नहीं सकते। फिर एक दिन बाबा डॉर्मेट्री में बैठे थे, जब एक बिल्ली खिड़की में से कूदकर अंदर आ गई। तब लड़के उसके पीछे पीछे भागे तो बाबा भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। तभी से यह कुछ कुछ खुलने लगा है। डॉट डॉट पृष्ठ संख्या 148। पप्पू किसी आया की मदद से नई निक्कर पहन कर और हाथ मुंह धोकर बाहर निकल आया, और महेंद्र बिना कुछ कहे सुने पप्पू का हाथ पकड़ कर उसे फिर से ले चला। 3:30 यही बज रहे थे। पिकनिक क्या खाक होगी? जंगल में चलते चलते वह दूर निकल आए थे। जंगल में दोपहरी की धूप पेड़ों के बीच से छन छन कर टेढ़ी तिरछी खपचियों में बिखरी पड़ी थी। पैरों के नीचे चरमराते पत्तों और चारों ओर की निस्तब्धता के कारण सारा का सारा दृश्य अलौकिक लगने लगा था। निषेध भगत का बेटा पप्पू को साथ लिए आगे आगे चलता जा रहा था। एक जगह उतराई पर महेंद्र ने मिसेज भगत की बेटी को उठाकर अपने कंधे पर उठा लिया। महेंद्र उचक उचक कर चलता तो बच्ची चहक चहक उठती। एक छोटे से पेड़ के नीचे महेंद्र खड़ा हो गया। तोड़ो पत्ता, उसने बच्ची से कहा, और लड़की ने अपना नन्हा सा हाथ ऊपर को उठाकर टहनी पर से पत्ता तोड़ लिया और किलकारियां भरने लगी। मिसेज भगत के संग चलते हुए किसी किसी वक्त महेंद्र को सुखद सा भ्रम होने लगता कि वह एक ही परिवार के सदस्य हैं। बाहर का भी कोई आदमी देखता तो उसे भी यह एक ही परिवार नजर आता। 3 बच्चे और पति पत्नी दोनों एक बड़ी सी चट्टान पर बैठ गए। बच्ची को महेंद्र ने कंधे पर से उतार दिया और वह सड़क के किनारे स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे दाने और फूल चुनने लगी। मेजर भगत के स्वास्थ्य में कोई अंतर आया है क्या? मिसेज भगत ने आंखें ऊपर उठाई। आपको मालूम है? हाँ, मैं स्वयं तो मेजर भगत से कभी नहीं मिला, लेकिन मेरे दो एक मित्र उन्हें जानते हैं। महेंद्र ने झूठ बोल दिया, मतलब सांत्वना देने से था। झूठ सच असंगत थे। सुनती हूँ बिलायत में इसका कोई इलाज निकल आया है, कोई किरणें वगैरह देते हैं, पर बिलायत में भेजने का इंतजाम सरकार ही करे तो करे। आपकी बड़ी हिम्मत है जो आप इतना कुछ सह पाई हैं और सह रही हैं, महेंद्र कहे जा रहा था। मिसेज भगत की आंखें डबडबा आईं। छोड़िए इस बात को, बच्चे पढ़ लिख जाएं बस। परंतु महेंद्र का मन बातें करने को चाह रहा था। मिसेज भगत को साथ बैठते हुए उसे फिर से स्निग्धता आत्मीयता का भास होने लगा था। प्रत्येक स्त्री का अपना विशिष्ट आकर्षण होता है, वह अक्सर सोचा करता था। प्रत्येक स्त्री अपने पृष्ठ संख्या 149 अनुरूप ही पुरुष के व्यक्तित्व में से अपने लिए गुण खींच लेती है। सुषमा के साथ बैठता तो मन कामुकता की ओर दौड़ता था। मिसेज भगत के साथ बैठता तो लगता जैसे संसार खिल उठा है। उनके साथ कविता की पंक्तियाँ दोहराने को मन चाहता, चांद सितारों की बातें करने को मन चाहता, अपने जीवन के समस्त अनुभवों की पिटारी उनके सामने खोल कर रख दे। पहले साक्षात से ही दूरियाँ मिट गई थीं और औपचारिकता की दीवारें ढा गई थीं। वन के एकांत में यह स्निग्ध आत्मीयता और गहरी होती जा रही थी, जब सहसा मिसेज भगत घबरा कर बोले, बच्चे कहाँ हैं? पप्पू और बेटा कहाँ गए? मुझे अजीब सी आवाज़ आई है, और वह चट्टान पर से उठ खड़ी हुई। महेंद्र ने कान लगाकर सुना, उसे भी हाँपने की सी आवाज़ सुनाई दी, और वह उन्हीं कदमों भागकर उस ओर गया जिस ओर दोनों बालक चले गए थे। महेंद्र कुछ ही दूर गया था जब उसे दोनों बच्चे नज़र आ गए। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पप्पू ने मिसेज भगत के बेटे के ब्लेजर का जेब फाड़ डाला था, और अब उसके बाल पकड़े हुए था और छोड़ने में नहीं आ रहा था। दूसरे लड़के ने उसका गाल मरोड़ दिया था और उसे गले से पकड़ रखा था, जिसके दांतों में से कहीं खून की बूंदें निकलकर पप्पू के कंधे और सफ़ेद कमीज पर पड़ रही थी। हटो, छोड़ो, छोड़ दो, महेंद्र ने चिल्लाकर कहा, और लपक कर उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया, और छूटते ही पप्पू के मुंह पर चांटा रसीद कर दिया। नहीं, मारिए नहीं, मारते क्यों हैं? पीछे से मिसेज भगत भी भागती हुई पहुंच गई थी। बच्चों को पीटा नहीं जाता, लाई हटिए, मैं संभाल लूंगी इन्हें। महेंद्र ने पप्पू को छोड़ दिया, मगर छोड़ने से पहले एक और चांटा उसे रसीद कर दिया। पप्पू चुप रहा, अविश्वास और धृष्टता की मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा रहा। आ बेटे, तू मेरे साथ आ, मिसेज भगत ने कहा, और जेब में से रुमाल निकालकर पप्पू का मुंह पोंछ दिया। उसी रुमाल से उसके घुटने भी पोंछ दिए, पर मिसेज भगत का मन खिन्न हो उठा था। पप्पू के हाथों के निशान उनके बेटे के चेहरे पर थे, और ब्लेजर फट गया था। उधर महेंद्र ने अपने बेटे को चांटे मार दिए थे। मिसेज भगत को बाप बेटा दोनों का व्यवहार बड़ा अभद्र सा लग रहा था। चलिए लौट चलें, 5 बजे इन्हें डॉर्मेट्री में पहुंचाना भी होगा। मिसेज पृष्ठ संख्या 150, भगत ने कहा, और वह लौट पड़े। रास्ते में देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही, पर स्कूल के नज़दीक पहुंचते पहुंचते महेंद्र इस घटना के लिए खेद प्रकट करते हुए बड़े रुद्ध कंठ से अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की चर्चा करने लगा।